الحمد لله وكفى،
سلام على عباده الذين اصطفى. لماذا؟ بش لجندن سلسلة لنقشبندية كي معمولات بيان كي جا رہے ہیں، ان کے فضائل بيان كي جا رہے ہیں. چنانچہ سلسلہ کے معمولات 6 ہیں، اور ان میں سے 3 کا تذکرہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں کیا. اور سب سے پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار کرنا، دوسرا معمول صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور کل کی مجلس میں ہم نے تذکرہ کرنا شروع کیا کہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا. مشائخ نے فرمایا کہ یہ تلاوت اگر ہر روز ایک پارہ ہو جائے تو بھی بہت اچھا، پر ایک پارہ کی مقدار ہی مشائخ نے ریکمینڈ کی ہے. مگر آج کے اس دور کے اندر جب ہمتیں تھوڑی سی پست ہو گئی ہیں، مشائخ نے ہماری آسانی کے لیے یہاں تک فرما دیا کہ آدھا پارہ بھی اگر کوئی پڑھے ہر روز تو وہ بھی معمول کو پورا کر لیتا ہے. بلکہ مشائخ نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگر کوئی ایک پاؤ بھی پڑھے گا قرآن پاک تو بھی معمولات کو پورا کرنے والا ہی سمجھا جائے گا. جو شخص ایک پاؤ بھی ہر روز پڑھتا ہے قرآن پاک، وہ سال میں 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیتا ہے. گو کہ مقدار تھوڑی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ اکبر، اتنی مصروفیت، اتنی جہاد، اتنے مسائل کے باوجود اکثر صحابہ، حضرت شیخ الاسلام صاحب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اور اس کتاب کا نام میں کل بھی بیان کرتے کرتے سوچ رہا تھا، اب بھی ذہن میں آ رہا ہے، غالباً اس کا کتاب کا نام جو معرف القرآن سے پہلے ڈالی گئی ہے، اصول القرآن ہے یا ہاں علوم القرآن ہے. بالکل، علوم القرآن کے اندر حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کی مبارک عادت کہ اکثر صحابہ، یعنی 80-90% صحابہ کرام 7 دن میں قرآن پاک مکمل فرماتے تھے. اسی لیے قرآن پاک کی یہ 7 منزلیں ہیں، یہ ترتیب جو ہے جیسے کہ پہلے بتایا گیا، قرآن کے جو 7 حصے جو کیے ہوئے ہیں یہ آسمانی ترتیب نہیں، یہ صحابہ کرام کی اس تلاوت کی ترتیب کی وجہ سے یہ بنی گئی ترتیب ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا معمولات میں سے ایک بڑا معمول ہے. کل کی مجلس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شفا بھی کہا، اور صحابہ کرام کے زمانے سے اب تک قرآن پاک کے ذریعے سے ظاہری بیماریوں کی شفا کی جاتی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ باطنی بیماریوں کی بھی شفا ہے. اسی طرح قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے برکت کا ذریعہ بیان فرمایا، ھذا ذکر مبارک انزلناہ، کہ یہ مبارک نصیحت نامہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا. تو کل کی مجلس میں ہم نے قرآن پاک کی برکات میں سے ایک برکت بیان کی تھی، یہ وہ برکت والی کتاب کی جس کو لوگوں نے بہت ہی بہت زیادہ اس کتاب کو پڑھا. یہ تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. آج کے اس مجلس میں قرآن پاک کی ایک اور برکت بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. کتابوں کو یاد رکھنا بڑا مشکل کام، قرآن پاک جتنے حجم کی کتاب جو ہے، قرآن کے علاوہ ایسی اتنے حجم کی کتاب یا اس سے کم و بیش حجم والی کتاب اگر کوئی ہے، اس کا آپ کو ایک بھی حافظ نہیں ملے گا. بہت مشکل سے بخاری شریف کے چند حفاظ کا ہم نے نام سنا ہے، اس 30 سالہ دینی زندگی میں کوئی ایک دو نام سنے ہوں گے کہ جی انہوں نے بخاری شریف حفظ کر لی. मगर इसके अलावा कुरान पाक जितने हुजम की कोई किताब किसी ने कभी भी हिफ्ज नहीं की है। अल्लाह ताला ने इस किताब को याद करना आसान फरमा दिया और कुरान पाक की निशानियों में से एक निशानी ये बता दी कि इसको याद करना आसान है। ताला फरमाते हैं वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। तहकीक, हमने इस कुरान को याद करना आसान कर दिया तो फिर कौन है जो नसीहत पकड़ेगा। ये कुरान पर ईमान लाने के लिए एक बड़ी निशानी ये है कि ये याद आराम से हो जाता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक मदरसा है कुरान पाक के हिस्स का। तालिब इल्म जब हिफ्ज कर लेता है तो उसको कुछ वक्त दिया जाता है दौर करने का और फिर उसका इम्तिहान होता है। और इम्तिहान क्या है कि उसने पूरा कुरान एक साथ ही बैठ के सुना है शुरू से आखिर तक। असातिज़ा इकराम सामने बैठेंगे और वो सुनाएगा, बीच में थोड़ी सी गैप लेनी है तो कुछ पानी पी सकता है। मगर तालिब इल्म जो है वो इम्तिहान उसका यही है, पास ये होगा कि पूरा कुरान बैठ के सुने। हमारे एक जानने वाले बुजुर्ग मदरसे में तशरीफ ले गए और उनको उसका रजिस्टर दिखाया गया। उस रजिस्टर में अक्सर तुलबा 5.5-6 घंटे में पूरा कुरान सुना देते। एक तालिब इल्म उसका देखा गया कि उसने कोई रुकावट किए बगैर 4 घंटे 35 मिनट में पूरा कुरान असातिज़ा इकराम को सुना दिया। अल्लाह हो अच्छी। तो अल्लाह ताला ने इस किताब को याद करना आसान कर दिया। हारून रशीद मुसलमानों का नेक बादशाह गुजरा है और हारून रशीद खुद भी हाफिज कुरान था। उसके दरबार में एक खादिम आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, एक आदमी आया हुआ है वो कह रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो हाफिज कुरान है, 5 साल का बेटा, पूरा कुरान उसने हिफ्ज कर लिया। बादशाह ने कहा मेरी समझ के मुताबिक 5 साल का बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कुछ हिस्से कर सकता है। 5 साल में तो बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हाफिज होगा ये, तो उसका वालिद गलत कह रहा है। खादिम ने कहा कि बादशाह सलामत वो आया हुआ है यहाँ पे बच्चे को लेके। हारून रशीद ने कहा कि अच्छा, मैं खुद भी हाफिज हूं, अभी इम्तिहान लूंगा, मैं 2 मिनट में पता चल जाएगा हाफिज है या नहीं है। बच्चे को जब सामने लाया गया, बच्चा जो था वो इतना छोटा था, वो अपने अब्बू से जिद कर रहा था कि अब्बू वो मुझे गुड़ की डली दे दो, जैसे आजकल के छोटे बच्चे जिद करते हैं जी कैंडी ले दो, चॉकलेट ले दो, डोनट्स लेने की बुरी जिद करते हैं। मैं तो जब भी मस्जिद जाता हूँ ना तो वापसी पे डोनट लेके आना पड़ता है, या कभी ऑफिस जाता हूँ तो डोनट लेके। वो डोनट जो है वो तो मीठी चीजें बच्चों को बड़ी पसंद। उस जमाने में जो जिद होती थी ना वो गुड़ की डली की होती थी, गुड़ गुड़ की डली नहीं है। तो हारून रशीद के सामने भी ये बच्चा जो था ये गुड़ की डली के लिए बहुत ज्यादा वो कर रहा था। तो वालिद ने आगे से कहा कि देखो बादशाह सलामत अभी आपसे कुरान सुनेंगे ना, अगर आप बादशाह सलामत को कुरान सुना देंगे तो मैं आपको गुड़ की डली देंगे। ये डील हो गई, बच्चा भी रेडी हो गया। अब क्योंकि हारून रशीद हाफिज कुरान थे तो उन्होंने बच्चे से 5 ऐसी जगह से कुरान सुना जो कि 5 मुख्तलिफ जगह और पूरी कुरान में स्प्रेड जगह, पहले पारे से तो फिर 10वें पारे से तो पूरा, यानी 30 पारे जिसमें कवर हो जाए, 5 मुख्तलिफ जगहों से और 5 ऐसी मशहूर जगह जहां से पता है कि अच्छे हाफिज को भी गलती लगती है, मगर बच्चों की मेमोरी बड़ी तेज होती है। इन पांच जगहों से उन्होंने सुना और उस बच्चों ने पांचों जगहों से सही सही सुना दिया। अल्लाह ताला ने इस कुरान को याद करना आसान कर दिया है। तो कुरान पाक की बरकात में से एक बरकत यह है कि इसको याद करने वाला छोटा बच्चा भी होता है। बूढ़ा आदमी कई मरतबा याद करने की कोशिश करता है, वो भी याद कर लेता है, मर्द भी याद कर लेता है, औरतें भी याद कर लेती है। एक आखिरी बात मुकम्मल करते हैं। अच्छा, चंद साल पहले अमेरिका में हमें एक दावतनामा मिला, मेरे बच्चे के हिफ्ज़े कुरान की महफिल है, आपने आना है, जानने वाले थे। तो अमेरिका में आमतौर पे मुसलमान जो है वो जॉब्स करते हैं, बहुत थोड़े होते हैं जो बिजनेस करते हैं, ट्रेंड ऐसे पर, मगर वो बड़े कारोबारी शख्स थे। तो उन्होंने दावत दी कि जी हिफ्ज़े कुरान की महफिल है, और वहां न्यूयॉर्क के अंदर बहुत बड़ा एक कंट्री क्लब था, उसके अंदर रखा हुआ था, यानी बड़ा मशहूर और बहुत ही महंगी जगह थी। तो हम और मस्जिद के चंद लोगों को उन्होंने दावत दी और हम सब मिल के गए, और वहां गए तो वो हिफ्ज़े कुरान की महफिल तो अजीब और गरीब, वो हजारों लोग दावत पे आए हुए थे, और मुसलमान जो डिग्निटरीज वहां पे थी, बड़े बड़े एम्बेसडर्स को बुलाया हुआ है, तो पता नहीं कौन कौन लोग आए हुए हैं। पूरे अमेरिका में जो सबसे बड़े मुअज्जिन थे, जो बिल्कुल हरमैन की तरह अजान देते थे, उनको बुलाया, अजान दी, उन्होंने तो ऐसा लगता था बिल्कुल आप हरम में बैठे हुए हैं, और इतना जबरदस्त माहौल, और फिर हजारों लोगों के लिए बड़ी पुरतकल्लुफ दावत। तो हमारे दोस्त थे, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई इतने बच्चों ने हिफ्स किया है कि इतनी बड़ी दावत आपने रखी है माशाल्लाह। उन्होंने कहा जी इतने सारे बच्चों ने हिफ्स नहीं किया, एक लड़की के हिफ्स की वजह से इतनी बड़ी दावत रही। मैंने कहा एक बच्ची ने हिफ्स किया और इतनी बड़ी दावत माशाल्लाह। मैंने कहा बड़ी बात है जी। उन्होंने कहा जी बात ही ऐसी है, इस बच्ची ने कुरान पाक यहाँ अमेरिका में रहते हुए हिफ्स किया, 4.5 महीने में पूरा कुरान हिफ्स कर लिया। तो अल्लाह ने इस कुरान को याद करना आसान कर दिया है। तो कुरान पाक की बरकात में से बड़ी बरकत यह है कि अल्लाह ने इसको याद करना आसान कर दिया है। अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक की बरकात नसीब फरमाए। आखिर रब्बिलमीन صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا
آمين.
ورقبتا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.